نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دم ذریعہ علاج اس بک میں سے ہم نظر بد کا علاج کر چکے اب ہم کر رہے ہیں حسد کا علاج اور حسد جو ہے یہ ہو جاتا ہے لوگ کرتے بھی ہیں لوگوں سے بھی کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ایک احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات کا بتا دیا جو ہمیں تکلیف دیتی ہے مجھے اس وقت بھی سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیتیں یاد آ رہی ہیں حریصٌ علیکم اللہ کے نبی تم پر حریص ہیں اور ان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ آپ کو تکلیف دے تو میں اس درد کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جب کوئی آپ کے لیے مخلص ہو اور وہ آپ کو ہر تکلیف سے بچانا چاہے ہر غم کا علاج اس کو پتہ ہو لیکن لوگ اس علاج کو ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچ سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دواؤں کا بتانا اور ان چیزوں کا یہ علاج کرنا جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ ہم سے شدید محبت کرتے تھے تو ہم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ حسد کی نظر سے بچانے والے اسباب ذرا بولیے پہلا سبب کیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اللہ سے دعا مانگے پناہ کی دعا کیجئے پھر دوسری بات ہے اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کرنا اللہ کے دین کی حفاظت کرنا شرعی حدود میں رہنا حرام سے دور رہنا پھر اسی طرح سے حاسد کے حسد پر صبر کرے اس کو معاف کرے اس سے جھگڑا نہ کرے نہ شکوا اور اپنی طرف سے بھی اس کو تکلیف نہ دے چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ پر توکل کرے کیونکہ جب اللہ پر کوئی توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور پانچویں دیکھی تھی کہ حاسد سے خوف زدہ نہ ہو خوف نہ کھائے اور ہر وقت اسی فکر میں نہ لگا رہے یہ بہترین دعائیں ہیں آج ہم چھٹی چیز دیکھیں گے اور اسی سے انشاءاللہ آج کی بات ہوگی کہ حاسد کی نظر سے بچانے والے اسباب میں اگلی چیز اپنی توجہ مکمل اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے کیا پتہ چلا توجہ کا ہونا یہ ہے اصل میں ایک انسان کو اللہ کی طرف مائل کرنے والی چیز اخلاص یعنی آپ اس کا کوڈ ورڈ رکھ لیجئے اخلاص مخلص یا مخلص پر حسد کا اثر نہیں ہوتا الا یہ کہ پھر اللہ ہی چاہے اللہ کی رضا طلب کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو عام دنیا داری کے کاموں کو عبادت بنا دیتی ہے کسی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں ہر ایک کھلاتا ہے میرا حال ہے کافر بھی کچھ نہ کچھ تو ایک دوسرے کو کھلاتے ہی ہوں گے مسلمان بھی کھلاتے ہیں مومن بھی سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی آپ کا اللہ کے تام گنا جاتا ہے تو یہاں جو لفظ اخلاص چونکہ اتنا کامن ہے جتنا یہ خوبصورت ہے نا اتنا ہی عام ہے تو وہ عام جیسے پرنٹ جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ کامن بھی بہت ہو جاتے ہیں تو جب بہت کامن ہو جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ لوگ اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں دیتے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت عام ہے اس لیے اگر اخلاص کے لفظ کو میں آپ کے لیے تھوڑا سا ایک اپنی ہماری جنرل فارم میں یا انسانی فہم کے اعتبار سے رکھوں تو اپنی توجہ مکمل اخلاص سے اللہ کی طرف رکھے اللہ کی رضا طلب کرے اس سے کیا مطلب ہے اپنا ہر کام جو زندگی میں دن رات میں وہ کر رہا ہے اس میں اس کی طلب اللہ کی رضا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے یہ نماز بھی ہے یہ صدقہ بھی ہے یہ کہیں دین کے لیے کام کرنا بھی ہے اور یہ کسی کے گھر کو صاف کرنا بھی ہے کسی مہمان کا استقبال بھی ہے خندہ پیشانی سے جو آپ کرتے ہیں یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ مخلص وہ ہے جو اپنا نہیں ہوتا جس کا دل دماغ جس کی سوچیں ہر وقت اللہ سے لگی ہوتی ہیں میرا اللہ کیا چاہتا ہے میرا اللہ کیا کہتا ہے اس بات سے میرا رب کتنا خوش ہوگا اس بات سے میرا رب ناراض ہوگا اس بات سے یہ ہوگا اس بات سے وہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جڑنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہیں بھی ہوں دھیان پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جاتا ہے تو جب آپ اور میں اپنے کاموں میں مخلص ہو جاتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی تعریف اور تنقید اور کسی بھی پروٹوکول کی زیادہ قدر نہیں ہوتی نہ کیئر ہوتی ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے مجھے کیا لینا ان سے مجھے یہ دے کیا سکتے ہیں ہے کیا ان کے پاس سب کچھ بھی دے دیں گے تو میرا اس سے کیا بنے گا مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے جب آپ اس درجے سے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ ذرا سمجھیے اب ایک دم لگتا ہے کہ اس کا کیا جوڑا ہے حسد سے آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا سکھاتی تو ہوں پتہ نہیں آپ بعد میں سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے مجھے نہیں اس کا اندازہ लेकिन सीखिए, सोचना सीखिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर गहराई पैदा हो और आप से इस सत्ता से उठें जिस पे इस वक्त जी रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। हसद का क्या तल्लक है इखलास से? जरा आप इसको खोलिए। जब आप किसी चीज को खोलते हैं तो अंदर से दिखता है कि बनी किस चीज से मिलके है। हासिद कौन है? जो आपको अल्लाह की दी हुई किसी नेमत की वजह से हसद कर रहा है। आप कहते हैं मेरा रब सब कुछ। आप बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिए। मैं इसको छोटी सी मिसाल से समझती हूँ कि जैसे एक मिल ओनर है ना, जिसकी अपनी मिल में सब कुछ बन रहा है, वहां से डिफरेंट लोग लेकर जाते हैं। कोई अपने शोरूम में रखता है, कोई दुकान पे, कोई गोदाम पे रखता है। असल सोर्स क्या है उस कपड़े का? मिल में, जहां वो बनती है। जिस बंदे की नजर मिल ओनर या मिल ओनर से जिसके ताल्लुकात है, उसको किसी के शोरूम में रखी चीज से क्या लगे? वो तो मिल ओनर को कह देगा, जब बनेगा सबसे पहले मुझे देना, जो बनेगा मुझे देना, मेरे लिए बना दो। उसको दूसरों की परवाह नहीं रहती। अब आप इसको समझिए कि अल्लाह पे आपकी नजर है सिर्फ अपनी समझ के लिए कि अल्लाह सारे खजानों का मालिक है। जब आपकी नजरें उस पे हैं, अब एक छोटा सा बंदा उठता है किसी शोरूम वाला, किसी दुकान वाला, कोई ऐसा, वो आपकी किसी नेमत के ऊपर नजर रखता है। हासिद कौन है? जो दूसरे की नेमत पे नजर रखता है। इसको क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, इससे छिन जाए मुझे मिल जाए। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो मिसाल है कि आपका वो कपड़ा ले लेता है दूसरा शख्स, तो आप मिल ओनर से एक और ले लेंगे? नहीं समझे? बस अब आपने देखा है कि कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं कि जो चीजें बनाते हैं ना, हर एक को नहीं देते, वो अपने खास लोगों को देते हैं। वो कहते हैं इट्स नॉट फॉर सेल। बाज लोग कहते हैं ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, हम इसको आप इस मार्केट में नहीं बेचेंगे। तो अल्लाह से ताल्लुक आपको दुनिया जहान के सारे फितनों से पाक कर देता है। करते रहे, लगाते रहे मुझे नजर, करते रहे मुझसे हसद, मुझे क्या है मेरा रब। अल्लाह जी आप मुझे बचाएं इनकी नजरों से, अल्लाह जी आप मुझे इनके हसद से बचाएं, अल्लाह जी ये मेरे बारे में ऐसी नेगेटिव बातें सोचते आप बचाएं। जू ही आप अल्लाह पर डालेंगे, आप मुतमईन अपने कंधों से चीज उठाकर दूसरे के हाथ में देने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ी दौलत है। मैं लफ्जों में नहीं ये सुना सकती, ना समझा सकती। ये बताने वाली चीज नहीं है, ये करके दिखाने वाली चीज है कि आप अल्लाह ताला पर नजरें लगाएं, फिर मजा देखें, फिर जीने का लुत्फ देखें। तो जितना हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत, इखलास और अल्लाह ताला के साथ अपना मामला सीधा करना आ जाएगा, उतना लोगों के शर से हम बचेंगे। वो नुकसान दे है बचाने वाला। वो कहते हैं ना कि क्या डर है अगर सारी खुदाई भी दुश्मन है, अगर खुदा मेरे साथ है। तो जब आप अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करते जाते हैं, दूसरों से निकलते जाते हैं। फिर अगला देखिए, अगला सबब, गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि ये इंसान पर इसके दुश्मनों को मुसल्लत करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है सूरत शूरा आयत 30, वमा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है या जो भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, यानी वो अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा लेता है। क्या पता चला? हसद क्या है? आपको एक तकलीफ पहुंची, कुरान कहता है तकलीफ पहुंचती है बीमा का सबत दी को, यकीनन मैंने कोई गुनाह किया, उसकी सजा में किसी ने मुझसे हसद किया, तो इलाज क्या? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कितनों को बात समझ आ गई है? यानी अस्तगफार करके आप वो उजर दूर कर लेते हैं जिसकी सजा में किसी ने आपसे हसद किया। नहीं समझ आई बात? कोई भी तकलीफ आती है आपके मेरे किसी गुना के सबब पे आती, मैं अपने दिल को इसमें दिन में बीसियों बार माइल करती हूँ कि मुझे किसी इंसान से भी कोई तकलीफ आती है तो वो मेरा ही कोई गुना है। मुझे अगर जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ आती है तो वो मेरा ही कोई गुना है, और मुझे रूहानी और जज्बाती टॉर्चर जो लगते हैं ये मेरा ही कोई गुना है। अब मेरा गुना है तो मैं किससे कहूँ? जिसने मेरे साथ तकलीफ मुझे दी उससे बात करूँ? नहीं, मुझे अल्लाह से कहना है कि अल्लाह तुझे पता है कि मेरा ये गुना इस इंसान के इस रवैये की सूरत में मेरे सामने आ गया। कोई इंसान आपको कोई बात कह देता है ऐसी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, अनएक्सपेक्टेड थिंग, कोई आपकी बेदहानी में कोई आपका दिल तोड़ देता है, कुछ भी कर देता है कोई एक इंसान आपके लिए, अब आप क्या करेंगे? आप उसकी इस बात को लेके, हाय इसने मुझे क्यों कहा, इसको अकल नहीं, इसको पता नहीं, इसने मेरे लिए ये करा, इसने मुझे क्या समझा। हम इंसानों में खोए रहते हैं। मुझे क्या चाहिए? अच्छा जी, ये आ गया ना तेरा गुनाह तेरे सामने। तूने कुछ गड़बड़ की हुई है ना, कोई अल्लाह के साथ तेरा मामला बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे पकड़ लिया। जूं ही आपको ये बात समझ आएगी, उसके बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे चोरी पकड़ी गई और आप उसके ऊपर तौबा करने लग गए। बिलीव मी, हम उस बंदे पे रोते हैं जो मर जाता है, जिसको अपने हाथ से कब्र में डाल आते हैं, जिसको अपने सामने डेथ बेड पे देखते हैं। लेकिन जिंदा लोग जिस बेहिसी का शिकार है और जो वो अपनी जिंदगियों से ले सकते हैं वो नहीं ले रहे ना, ये रोज की मौत है। और इसको एक साहिबे दर्द ही जानता है। वो एक शेर है ना कि जो देखा है मैंने वो औरों को दिखला दे। सारे लोगों को सब कुछ दिखता भी कोई नहीं है, और जब दिखाने की कोशिश की जाए तो देखना भी नहीं चाहते, मसरूफियात बहुत है। हमारा हाल इस वक्त दुनिया में जीने का पता क्या है? किसी को बड़े अहम काम से अब कहीं भेजे, और वहां जाके अब बाथरूम में गए किसी अहम काम के लिए, और वहां की बत्तियां और वहां के शीशों में खो के उस काम को भूल जाए जिसके लिए आप अंदर गए थे। आज हमारा ये हाल है। हम इतने डेविएटेड, डिस्ट्रैक्टेड और इतने ज्यादा अपने मरकज से हटे हुए लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है जो हमें 3 वक्त की रोटी, खाना, पानी दे रहा है। और हम में से अक्सरियत जी इसके लिए रही आज, रोटी खानी, खाना पकाना, ये करना। यानी ये जरूरियात तो हैं, लेकिन ये जिंदगी का मकसद बन जाए तो फिर लकद खलक नल इंसान अभी अक्सनी तकवीम सुम मरदत ना हो असफला साफरी। जाने का वक्त आ जाता है और जीना नहीं आता। इस दुनिया में जीना इतना हमारे लिए ना समझ आने वाला राज बन गया है कि हम बस उसी डगर पे चले हुए इस वक्त जिस पे दूसरे चल रहे हैं। अल्लाह को ना मानने वाले भी, और सबसे बढ़कर जो जानवर है जिस तरह वो जी रहे हैं, जो उनकी डिजायर्स और इंस्टिंक्ट हैं, आज के मुसलमान की वो बन गई हैं। वाकई अल्लाह सबूर है और अशकूर भी है। तो लिहाजा मैं और आप अपने गुनाहों पे नजर रखें। हम कहते हैं नजर लगा गया, हम कहते हैं हसद कर गया, हम कहते हैं ये कह गया, हम कहते हैं वो कर गया। कहा क्यों, कह क्यों गया, वो नहीं हम याद रखते। देखिए आप हकीम के पास जाएं और उसको ये तो कहे मेरे पेट में दर्द है, ये ना बताएं कि रात को कच्ची रोटी खा ली थी। तो हमने क्या किया, बीमारी तो बताई, वजह नहीं बताई। हम लोगों में रोते धोते हैं, हाय ये हो गया, हाय मेरे साथ मजबूरियां, हाय मेरे साथ मुश्किलें, लेकिन हम उसकी वजह नहीं बताते, क्योंकि हम बाज़ खुद भी इतने लाओबाली होते हैं, हमें खुद भी नहीं उस वजह का पता होता। तो लिहाजा अपने गुनाहों को कम करना, अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना है, यही सुकून है, यही इत्मीनान है, यही सब कुछ है। फिर इसके बाद आप देखिए अगली चीज, मुमकिन हद तक नेकी और सदका करें। तकालीफ, नजर और हासिद का शर दूर करने में इसका भी अजीब असर होता है, इसको भी समझिएगा। आपसे किसी ने हसद किया, और फिर वही बात जो पीछे बार बार हम कर चुके हैं कि हमारा एक्सपोजर ही इतना होता है कि हसद हमसे करेंगे लोग। पहले लोगों के पास कुछ होता था तो दिखाते थे, कारून के पास था तो उठ उठ के पहन पहन के दिखाता था ना, और अपने जेवरात की नुमाइश करता, और अपनी घोड़ों पे सवारियों पे खूबसूरत सामान रख के लाद के लोगों के पास से गुजरता, और खासतौर पे वहां से गुजरता जहां मूसा अलैहिस्सलाम तौरात सिखाया करते थे। कुछ था तो दिखाया, लोगों ने उसको देखकर क्या कहा, हाय कितने नसीब वाला है। सूरह कसस में आप पढ़िए, पूरे उनके डायलॉग्स लिखे हुए हैं, हाय जू हज़े नजीम, कितना हो लकी ही इस, ओ वाह कभी मेरे भी मियाँ के पास इतने पैसे हों, मैं भी ये जोड़े पहन के निकलूं, मैं भी डायमंड्स पहनूं, मैं भी मिस वर्ल्ड बन जाऊं। उसके पास था, आज है भी कोई नहीं, फिर भी बन बन के दिखाते हैं। कौवा चला हंस की चाल के अपनी भी भूल गया, उसको तो शायद थोड़ा सा हक तो पहुंचता ही हो डिस्प्ले का, आज जो डिस्प्ले है ये तो अंदर खोखला है, और खोखली चीज बाहर से कितनी बड़ी लगे, एक हाथ पड़े वो सुराख हो जाता है। ये आज के इज्तमाई कल्चर की बातें हैं। तो जब हम सदका देते हैं, नेकी करते हैं, देखिए कुल्लू मारूफ इन सदका, हर नेकी सदका है। आपको क्या पता कि आज आपने यहां आकर एक नेकी की, ये आपको कितनों के शर से बचा गई, कितनों के हसद से बचा गई। हदीस में आता है कि सदका अल्लाह के गजब की आग को बुझाता है, गुस्सा आया होता है बंदे के ऊपर अल्लाह को, आता होगा बड़ा, ये तो वह सबूर है तो बस चल रहा है मामला, लेकिन अल्लाह को गुस्सा तो बड़ा आता होगा हमारी हर मस्तियों पे। लेकिन बंदा इधर से सदका करता है, कोई नेकी कार आता है, तो अल्लाह ताला उस नेकी की वजह से कम अज कम उसको दुनिया की इस परेशानी से बचा लेता है। इसीलिए आपको पता है कि जो लोग दिल खोल के सदके देते हैं ना, उनका दिल और खुलता है। जैसे वो जंजीर होती है ना, उसकी एक कड़ी ढीली करो तो फिर अगली भी ढीली होती है। हदीस है, उसका खुलासा ही बता रही हूँ कि जो बखील है ना, उसकी मिसाल है एक ऐसे शख्स के जो जंजीरी में जकड़ा हुआ है, तो जब संगलियां पड़ी हुई हैं या चेंड है कोई शख्स, तो उसका तो सांस भी नहीं खुलेगा, लेकिन जब वो सदका देता है तो उस जंजीरी का एक एक कड़ी खुल जाती है, यानी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। फिर एक और सदका देता है तो थोड़ी और खुलती, तो वो जंजीरियों में जो जकड़ा हुआ है वो खुल गया ना। असल में ये अंदर का बुखल है कि जो हमें सदके पे माइल नहीं करता। हम लाखों लगा लेंगे, हजारों लगा लेंगे अपनी जात पे, अपने नाम पे, अपने फन पे, अपनी पार्टियों पे, लेकिन जहां हमें कोई पड़ेगी मुसीबत, हम कहेंगे हाँ ये पैसे बड़े चुभते हैं, ये नहीं दे सकते। फिर अगली चीज देखिएगा, बहुत अहम है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। हासिद सरकश और तकलीफ देने वाले की आग को इस पर नेकी करके बुझाई जाए, यानी हासिद सरकश और तकलीफ देने वाले की आग को इस पर नेकी करके बुझाई जाए। जैसे जैसे वो आपको तकलीफ, ईज़ा और हसद में इजाफा करे, आप इससे नेकी, नसीहत करने और इससे नरमी से पेश आने में इजाफा करते जाएं। याद रहे, इस काम की तौफीक सिर्फ उसे मिलती है जिसका दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा है। किसी को कुरान की कोई सूरत याद आई जिसमें ये बात है? वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। चले आप बता देना। हमीम सजदा। अल्लाह ताला कहते हैं इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई का जवाब भलाई से दो। हाँ है बड़ा मुश्किल। हम तो कहते हैं बुराई का जवाब उससे बड़ी बुराई से देंगे, हम कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उसने मुझे सताया, मैं उसको और सताऊंगी, उसने मुझे खपाया, मैं उसको और खपाऊंगी, उसने मुझे एक लगाई, मैं उसको चार लगाऊंगी। नहीं, अल्लाह कहते हैं ये बड़े नसीब वाले लोग हैं, जैसे हजरत यूसुफ थे, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कितना लोग सताते थे, अभी पढ़ेंगे हम, और उनकी जुबान पे उनके लिए दुआएं ही थी। याद रखिए, बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया में आज जो लोगों की भलाई पे हरीस है। तो लिहाजा बुराई करने वाले के साथ अच्छा करें, किल विद काइंडनेस। आप देखेंगे कि ये वो मार होती है जिसको बहुत कम लोग बर्दाश्त कर सकते। नबी सल्लम पे कोई कूड़ा डालती थी औरत, फिर एक दिन नहीं डाला, दूसरा दिन भी आ गया तो ऊपर चले गए, बहन क्या बात हुई, आज तुमने मेरे पे कचरा नहीं डाला, सब पर देखा बीमार है, जाके उसका काम कर दिया। याद रखिए, ये सुन्नत है, तबलीग से पहले खिदमत। हम मुबल्लिग बन के पहुंच जाते हैं लोगों को वाज सुनाने और लंबे लंबे दर्स सुनाने, लेकिन हम लोगों की खिदमत नहीं करते। हमारे प्यारे नबी ने ये सिखाया था कि लोगों के दुख दर्द में जाओ। हम कहते हैं हम उनके जाएंगे जो हमारे जाते हैं, जो हमारे जाते हैं ना, बस हम उनके जाएंगे। तो किसी की बुराई के जवाब में उसके साथ भलाई, और ये हर एक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद आखिरी चीज़ जो हमारी इस बुक में है, हासिद के हसद के जवाब में, अल्लाह ताला की तौहीद और इखलास की असरे नौ तजदीद करें। तजदीद मीन रिवाइवल, उसको नया करें। हर किस्म की तकलीफ और फ़ायदा अल्लाह ताला के हुक्म से ही मिलता है। इसी अकीदे पर इन असबाब का दारोमदार है, और इसी की बुनियाद पर इंसान इन असबाब को इख्तियार कर सकता है। बस तौहीद अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन कला है, जो इसमें आ जाए वो महफूज है। तौहीद, अल्लाह करे हमें तौहीद समझ आ जाए। आप देखिए कि जिंदगी का जो खुलासा है ना, वो तौहीद है। हम एक रब पे नजरें लगाए बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकते, हम अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जो भी हमें तकलीफ पहुंचती है ना, ये हमारी तौहीद का इम्तिहान होता है। जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे हालात आ जाते हैं कि आप तन्हा रह जाते हैं। लोग कहते हैं मैं जाऊं तो किधर जाऊं, मैं दर खटखटाऊं तो कौन सा खटखटाऊं, मैं कहूं तो क्या कहूं, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो क्या करूं, اس وقت اللہ آپ کو کہتا ہے کہو قل ہو اللہ احد، اس وقت کہو کہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، میں ایک اللہ پہ توکل کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بار بار ریوائز کریں. دیکھیے آپ اس کو سمپل سی مثال سے سمجھیے، مثال اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو. آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی رہتی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ بیوی ساتھ ہے شوہر بھی ساتھ ہے تو خوش ہیں، تو رہ رہے ہیں خوش ہیں یا جو بھی ہے، پھر کیوں کچھ کچھ عرصے بعد ہم کہتے ہیں آئی لو یو، ڈو یو لو می؟ وہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ ایک سوال جو بیوی ساری زندگی کرتی رہتی ہے اور اس کو اس کا جواب نہیں آتا یا اس کو یقین نہیں آتا، اور وہ کہہ کے ڈو یو لو می، 10 سال بعد بھی پوچھے ڈو یو لو می، تو وہ انہوں نے کہا جو اسپیکر تھے کہ عورتوں کی یادداشت اس معاملے میں بہت کمزور ہوتی ہے، کہ میرا میاں مجھے پہلے کہہ چکا ہے کہ ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن اس کا دل کرتا ہے میں سنوں. ایک انسان ہے نا، چھوٹا سا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، یہ جو تجدید ہے نا، قل ھو اللہ احد لا الہ الا اللہ، آپ کہہ کے تو دیکھیں آپ کا دل پکارے گا لا الہ الا اللہ. یہ تجدید یہی ہے، کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. اور آپ عرب کلچر میں دیکھیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا، میں نے قریب سے دیکھا ایسی موقع، بچے ستاتے ہیں نا تو ایک دم جا کے کہیں گے لا الہ الا اللہ. یہ کیا مطلب ہے کہ بچوں تم یہ کیا کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو ایک انسان کو ہر دکھ اور غم سے بے نیاز کر دیتا ہے. اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیں اور آپ اس کو پکاریں، آپ کو ایک اطمینان اور ایک سکون ملے گا. میں کدھر جاؤں، لا الہ الا اللہ، کون ہے میرا، لا الہ الا اللہ، کیا کروں میں، لا الہ الا اللہ. آپ اس لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لائیں، پھر رنگ تو دیکھیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اب تو ہمارے دنیا سے شاید جانے کے دن آگے ہوں گے، اللہ کو پتا کس نے کب جانا ہے، نہ بچے نے نہ جوان نے نہ بوڑھے نے، اپنی مرضی سے تو نہیں مرنا. لیکن ایک دفعہ یہ دعاؤں میں دعا شامل تو کریں کہ اللہ یہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرا کے اس کو جسم کے ایک ایک انگ پہ جاری کرا دے. یہ وہ کیفیت ہے جو بندے کو اطمینان اور سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے. کسی کا میں دیکھ رہی تھی، پڑھی تھی بلکہ ان کی بات، نان مسلم تھی پھر اسلام قبول کیا، بہت ساری زندگی میں ان کے اوپر نیچے حالات آئے ٹیڑھے میڑھے، اللہ نے ان میں سے نکالا ایک خیر کا خزانہ، اسلام مل گیا. تو جب وہ مسلمان ہوئیں تو وہ کہتی تھیں میرا دل کرتا ہے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت پہ کھڑی ہو جاؤں، یعنی مراد کے سب مجھے سنیں، سب سے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مجھے سکون ملا اور یہ لا الہ الا اللہ نے جو مجھے خوبصورتی اور سکون دیا ہے، یہ تم پانا چاہتے ہو تو میری بات مان کے دیکھو. تو مجھے آپ کو بھی اسی کو پانا ہے. کلمہ نام سے کوئی نہیں پڑھنے والے، منہ سے پڑھنے والے تو بڑے ہیں، اس کو عمل میں ڈالنا ہے. تو یہ 10 چیزیں تھیں جس پہ عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ حسد بلکہ نظر اور جادو کے شر کو دور کیا جا سکتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ پختہ کر دیں. ساری جنگ ہی کھیل عقیدے کا. بڑی بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں جو اللہ کے رستے میں آتی ہیں اگر اللہ سے محبت ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پہاڑ کی طرح بڑی محسوس ہوتی ہیں اگر اللہ سے نظریں ہٹی ہوں. کلیئر ہے سب کچھ؟ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.